हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 16। ज्ञानी न तु तद् ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्य वच ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। पहले मैं कुछ इस पर टिप्पणी करूंगा और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। अविद्या के कारण हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या चूज करना चाहिए, किस चीज का चुनाव करना चाहिए, कौन सी इच्छा को मुझे को हाँ बोलना चाहिए, कौन सी इच्छा पर मुझे कार्य करना है और कौन सी इच्छा को मुझे पे कार्य नहीं करना है। जैसे ताज होटल में जब अटैक हुआ था तो एक भक्त हैं, उनके एक मित्र उसमें एक कमांडर के रूप में युद्ध किए थे और वो कह रहे थे कि उसमें उस समय पूरा रोशनी उसकी काट दी गई थी और उनको अंधेरे में बड़ा ही मालूम करना मुश्किल होता था कि ये आतंकवादी कौन है और जो मासूम व्यक्ति है वो कौन है। उसी प्रकार से हृदय में हमारा जो अज्ञान है उसके कारण से हमारी चेतना पूरी तरह से आवृत है और हम समझ नहीं पाते कि कौन सी इच्छा मेरे लिए लाभकारी है या मेरे लिए श्रेयस्कर है और कौन सी इच्छा मेरे को अधोगति में डालने वाली है, अपितु जो इच्छाएं मुझे दुख देने वाली हैं जिसकी चर्चा भगवान आगे करेंगे उनको मैं सोचता हूं कि वो मेरे लिए सुख देने वाली है। दुखेशु सुख माने ना, भागवत में भी इस बात को बताया गया है। तो आत्मा जो अविद्या से ग्रसित है वो ये सोचती है या हम लोग सोचते हैं कि जितना हम पदार्थ का भोग करेंगे उसका शोषण करेंगे उतना मैं अधिक सुखी हो जाऊंगा, परंतु होता क्या है, मैं पदार्थ से और अधिक प्रभावित होने लगता हूं, आसक्त होने लगता हूं। तो ये बहुत खतरनाक है और साथ साथ इस पदार्थ का शोषण करने की जो इच्छा है ये आत्मा को इस पदार्थ से जगत से और बांध चली जाती है। तो हम इस कारण से नहीं समझ पाते कि हमारा सच्ची जो सुख है वो भगवान से प्रेम में संबंध को वापस जागृत करने के लिए है। तो आध्यात्मिक सुख की इच्छा ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अविद्या के कारण हम सोचते हैं कि भोग करने से हम सुखी हो जाएंगे और इसके द्वारा हम मुक्त हो जाएंगे। तो पिछले श्लोक में बताया गया था किस प्रकार से व्यक्ति अज्ञान के कारण व्यक्ति गलत कार्य करता है और गलत कार्य करने के द्वारा वो और अधिक बंधता चला जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण यहां बता रहे हैं कि जब व्यक्ति को भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त होता है वो समझता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, भगवान का अंश है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो इस ज्ञान से उसका हृदय, उसका अंतःकरण उस प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे सूर्य उगने से एक पूरा देश, पूरा शहर प्रकाशित हो जाता है। इससे पहले भी हमने चर्चा करी कि शरीर को पुर से, शहर से कंपेयर किया गया था। तो जिस प्रकार से सूर्य उगने के बाद हम सब कुछ सही परिपेक्ष में देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि कौन सा कार्य मुझे करना है, कहां पे पत्थर है, कहां गड्ढा है, उसी प्रकार से व्यक्ति जब भगवद गीता के ज्ञान को स्वीकार करता है तो उस ज्ञान से वो समझ पाता है कि उसे कौन सी क्रिया करनी चाहिए, कौन सी क्रिया बंधन करने वाली है, कौन सी क्रिया मुक्त करने वाली है। तो इसके द्वारा व्यक्ति समझ सकता है कि, तो हमने देखा कि किस प्रकार से स्वार्थी जीवन जीने से अलग प्रकार का चेतना का निर्माण होता है और निस्वार्थ जीवन जीने से अलग प्रकार का कारण होता है, चेतना का निर्माण होता है, चेतना का शुद्धिकरण होता है। तो व्यक्ति लगातार जब कर्मयोग करता है, अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता रहता है तो धीरे धीरे वो आध्यात्मिक सत्यों को अनुभव करने लगता है अपने चित्त में। और शुरुआत में वो इसलिए करते हैं ताकि वो कर्म बंधन से मुक्त हो, उनका हृदय का शुद्धिकरण हो। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। लेकिन जैसे जैसे आत्मा की शुद्धि होती जाती है वो कृष्ण का भी अनुभव करने लगता है और फिर वो समझता है कि भगवान कृष्ण से, इसको यहाँ पे बोल रहे हैं प्रकाशयति तत्परम, कृष्ण भावना मृत को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो कृष्ण की सेवा करने के लिए व्यक्ति बहुत जागृत हो जाता है, बहुत सुखी हो जाता है। तो इस चर्चा के बारे में, यानी कि हमने समझा इस श्लोक का मतलब कंडेंस फॉर्म में कि अज्ञान के कारण हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और जब हमारा ज्ञान नष्ट होता है भक्ति के द्वारा, भगवान को अपने कर्म समर्पित करने के द्वारा, तब हम समझ पाते हैं आध्यात्मिक सत्यों को और भगवान के कृष्ण भगवान कृष्ण की सेवा के लिए और उत्सुक हो जाते हैं। तात्पर्य, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। मोहग्रस्त होते हैं जो कृष्ण को भूलने का कारण क्या है, अविद्या, और मोहग्रस्त होने का मतलब है अपने को शरीर मान लेना। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा न ही ज्ञाने न सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है, श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यानी कि ये ज्ञान होना कि कृष्ण ही इस जगत के स्रोत हैं और उनकी शरण में मेरे को जाना है। तो आप कहेंगे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो हमने कई बार चर्चा करी है, ज्ञान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ तरीका है शब्द प्रमाण। तो भगवद्गीता और भागवतम पे श्रद्धा रख के अगर कोई स्वीकार कर लेता है कि कृष्ण भगवान हैं, मैं उनका अंश हूं, मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो कोटि कोटि जन्मों की सुकृति का फल है। इस कारण से ऐसी श्रद्धा है और ऐसे व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त कर रहा है। और जो लोग इसमें रिसर्च में लगे हुए हैं कि भगवान कौन है, गीता में तो लिखा है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, तो उनको अभी और शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और जैसा कि यहाँ पे श्लोक में लिखा गया है, कई कई जन्मों में इस प्रकार के मूर्ख ज्ञानी, आप कहेंगे ज्ञानी मूर्ख कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवद गीता में लिखा है वो स्वीकार नहीं करेगा, अपनी रिसर्च करेगा, तो ऐसे रिसर्च करने के बाद वो समझता है कि कृष्ण भगवान है और उनकी फिर शरण में जाता है। तो ज्ञान का अर्थ बहुत सिंपल है कि कृष्ण मेरे प्रभु त्राता जीवेर होइल ज्ञान। कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे पालक हैं, और मेरे एकमात्र जीवन का कर्तव्य है उनको संतुष्ट करना। अनेक अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है और इसको संबंध में नाम से करूंगा। हरे कृष्ण महामंत्र के नाम जप में तीन अवस्थाएं होती हैं, नामापराध, नामाभास और नाम शुद्ध नाम। तो इस नामाभास का गुणगान करते हुए शिला रूप गोस्वामी कहते हैं, यथा भासोपि उद्यन कवलत भवध्वांत विभवो दृशाम तत्वांधानाम अपि दिशति भक्ति प्रणयनीम। नाम उच्चारण करते करते भगवान का नाम हमारे हृदय में सूर्य की तरह धीरे धीरे उगने लगता है, और जब सूर्य की पहली किरण आती है तभी हमारे सब प्रकाश, उसके पहले सूर्य उगता भी नहीं है, केवल उसकी पहली किरण मात्र आती है, तो हृदय से सारा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, आकाश से सारा जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, और चोर डकैतों का भय इत्यादि भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम नाम करते हैं और अपराधों से बचने का प्रयास करते हैं, ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करते हैं, तो ये नामाभास की स्थिति होती है, और इसको करने मात्र से हृदय आलोकित होने लगता है, हमें ये भगवद गीता का ज्ञान बड़ी आसानी से समझ में आने लगता है, और जो हमारा मोह है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं ये भी ढीला पड़ने लगता है केवल नाम उच्चारण करने मात्र से। तो मैं सूर्योदय के बारे में बता रहा था, इसलिए संबंध में बात बोली। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है, उदाहरणार्थ जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है, क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, प्रायः माया से ग्रस्त जीव अपने आप को शरीर मानता है, तो कुछ लोग समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन ये और उनकी धारणा हो जाती है कि हम केवल अज्ञान में अपने आप को भगवान के रूप में भूले बैठे हैं। कहने का अर्थ, उनका धारणा यह है कि हम पहले भगवान थे लेकिन माया ने हमको पकड़ लिया और इस कारण से हम भूल गए कि हम भगवान हैं। तो अब इस बात का खंडन कैसे किया जाए? बहुत सिंपल सी बात है, भगवान का अर्थ मतलब हो गया सर्वशक्तिमान, माया के कंट्रोलर। तो जब माया ने तब हमको पकड़ लिया जब हम भगवान थे, तो अब हम जब माया से ग्रसित हैं, कमजोर अवस्था में है, तो माया हमको कैसे छोड़ देगी? तो ये बहुत बड़ी माया है जब कोई व्यक्ति सोचता है कि वो भगवान है, ये भगवान बन सकता है। ना तो हम भगवान बन सकते हैं और ना तो हम भगवान हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो ये बात अगर समझ ले तो पूरी तरह से माया से मुक्त हो जाएगा। अदरवाइज कोई व्यक्ति सोचे कि भगवान से कोई श्रेष्ठ माया है जो उनको पकड़ लेती है, वह असंभव है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु उससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा के अंतर में अंतर ना कर पाए। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग सोचते हैं कि वही भगवान है, और जब तक ये भावना रहेगी कि मैं भगवान हूं, तब तक जीवात्मा की मुक्ति असंभव है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में हो और सही आचरण करे तो उसे जेल से मुक्त कर दिया जा सकता है प्रेसिडेंट की इच्छा से। लेकिन अगर वो बोलने लग जाए, सोचने लग जाए कि मैं ही प्रेसिडेंट हूं और कितना भी अच्छा आचरण करे, तो उस पागल को कभी भी जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो ये बहुत बात आगे भी गीता भगवान बोलते हैं इस बात को कि जो भी व्यक्ति मुक्ति का प्रयास कर रहा है और ये सोच रहा है कि वो भगवान के समान है, तो वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। तो इस धारणा को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए और यही धारणा रखनी चाहिए जो कि सत्य है, कि हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के सेवक हैं। और एक और बात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है उससे सीखना चाहिए। कौन व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होगा? जिसने परंपरा में ज्ञान को स्वीकार किया है। और हम प्रत्यक्ष देखते हैं, मैं एक बार एक गांव में गया प्रचार करने के लिए, तो उस व्यक्ति ने 35 भागवत कथा करवा रखी है। और एक कथा 7 दिन की होती है, 4 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे की मान लीजिए, तो 21 घंटे एक हफ्ते में गुणा 35 कर लीजिए। और उसके बावजूद उस व्यक्ति को यह पता नहीं था कि भगवान कौन है, जबकि श्रीमद् भागवतम के हर पन्ने में, हर श्लोक में बताया गया कि कृष्ण भगवान है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति भागवत कथा कर रहा है वो बिल्कुल भी कृष्ण भावना भावित नहीं है। इस कारण से अपने शिष्यों को, अपने चेलों को भी नहीं समझा पा रहा है कि भगवान कौन है। लेकिन कोई इस्कॉन में आता है और प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ता है और भक्तों से सुनता है, तो बड़ी आसानी से इन बातों का ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण भगवान है और मुझे उनकी शरण लेनी है, मैं उनका नित्यदास हूं। तो जो बात बहुत मुश्किल है बाहर के लोगों के लिए समझना, वो एक प्रमाणिक भक्त के लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वो परंपरा में इस ज्ञान को स्वीकार करता है। किंतु यदि, इसलिए प्रपाद बोल रहे हैं, किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। प्रमाणिक का अर्थ है वो गुरु परंपरा में होनी चाहिए और वो परंपरा भी प्रमाणिक होनी चाहिए। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध का सही सही को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। व्यष्टि का अर्थ क्या है? व्यक्ति, व्यष्टि का अर्थ है भगवान एक व्यक्ति हैं और मैं भी एक व्यक्ति हूं, मेरा व्यक्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। बहुत लोग समाज में, स्पेशली भारत में, ये कंसेप्ट है कि हम मुक्ति के बाद भगवान में लीन हो जाएंगे। हम भगवान में लीन नहीं होते हैं, हमारी इच्छाएं भगवान में लीन हो जाती हैं। क्या अर्थ है? हम इस समय भगवान से अलग होकर इच्छा कर रहे हैं, लेकिन भगवान में लीन हो जाने की, इच्छाओं को लीन हो जाने का मतलब है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए इच्छा करना। लेकिन इच्छा करने की शक्ति या इच्छा करने की जो क्वालिटी है वो आत्मा से कभी निकाली नहीं जा सकती। आत्मा अविनाशी है, इसको भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया था। तो इसलिए समझ में आना चाहिए कि हमेशा आत्मा एक व्यक्ति रहती है और भगवान भी एक व्यक्ति है, और दोनों व्यक्तियों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है, जो उसको भक्ति कहा जाता है, और वो भी शाश्वत संबंध है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, यानी कि व्यक्ति थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं, संप्रति का मतलब आज भी व्यक्ति हैं, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे, यानी व्यक्ति बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन के सूर्य में, सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। बहुत अच्छी बात है कि जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो वो नहीं समझ पाता, अंधेरे में सब कुछ एक जैसा लगता है। ऐसे ही व्यक्ति जो अज्ञान में रहता है तो उसे लगता है नहीं, सारी आत्माएं एक हैं और भगवान भी वही है, ऐसे करके। तो भगवान से अपने संबंध को, भगवान के महत्व को, भगवान की महानता को नहीं समझता। लेकिन जब हम प्रमाणिक रूप से गीता भागवत को सुनते हैं तो फिर हम समझ पाते हैं कि भगवान विभु हैं, महान हैं, अनंत हैं और मैं बहुत छोटा हूं, मैं अणु हूं और मेरा कर्तव्य है, मेरी सहज स्थिति है कि मैं प्रेम से उनकी सेवा करूं निस्वार्थ भाव से और उसी तरह से मैं अनंत सुख की प्राप्ति कर सकता हूं। और इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्ण।